हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 139। सुनैना उनके पीछे नहीं गई और आगे आकर भवानी काका से बात करने लगी। काका, आप ठीक तो है ना? और ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते चाचा और चाची। वैसे मैं ज्यादा जानती नहीं, शादी से लेकर अब तक एक दो बार ही मिली हूँ, लेकिन फिर भी काफी अजीब से हैं दोनों। बाहर की तरफ जाते हुए चाचा चाची की तरफ देखते हुए सुनैना काका से बोली, का बताऊं मिटिया, पैसा अपनों में दरार बहुत जल्दी ले आता है, और कुछ यही आदित्य बेटा और उसके रिश्तेदारों का भी हाल है। सब उसके पीछे हैं, लेकिन सिर्फ उसके पैसों के लिए। दिल से कोई भी उसका भला नहीं चाहता, बल्कि सब उल्टा उसे। और इतना बोलते हुए काका एकदम चुप हो गए और एक गहरी सांस भरी। रिश्तेदार तो सबके ही ऐसे होते हैं, लेकिन और क्या मतलब, आदित्य के साथ ये लोग कैसा बर्ताव करते हैं? मेरा मतलब है, वो इतना अलग अलग क्यों रहता है सबसे? सुनैना ने फिर से काका से सवाल किया। काका उसकी तरफ देखकर उसे समझने की थोड़ी कोशिश करने लगे, जैसे कि ये तय कर रहे हों कि वो सुनैना पर आदित्य को लेकर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। ये सारे लोग, आदित्य बेटा की बुआ, चाचा, चाची और जितने भी रिश्तेदार, वो सब उसे मनहूस मनहूस कहते हैं, और साथ ही उसके पीछ पीछे ये सब बातें भी बनाते हैं कि वो जिसके साथ भी रहता है उस इंसान के साथ बुरा ही होता रहता है और वो मर जाता है। तो बस बड़े साहब की एक्सीडेंट में मौत के बाद से आदित्य बिठवा भी उन सब की बातों को कुछ ज्यादा ही गंभीर लेने लगा है, और इसीलिए बस सबसे दूर दूर रहता है। लेकिन तुम मेरी बात अलग है, पता नहीं कैसे तुमसे शादी के लिए राजी हो गया है और तुमरे साथ ही रहता है। सुनैना को परखने की कुछ देर कोशिश के बाद भवानी काका ने आदित्य से जुड़ी हुई जितनी बातें उन्हें पता थी वो सब सुनैना को बता दी, लेकिन ये सारी बातें बताते हुए वे बहुत ही दुखी नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ सुनैना का भी ये सब कुछ सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ऐसा कुछ होगा इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। ओ माय गॉड, आज के ज़माने में इन सारी बातों को कौन मानता है? और आदित्य, वो शायद इतनी ड्रिंक भी इन्हीं सब बातों को भुलाने की वजह से पीता है। वो पागल है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। काका की पूरी बात सुनने के बाद सुनैना एकदम हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ ये सब बोली, वो तो हम भी जानते हैं बिटिया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपके आसपास का माहौल ही ऐसा हो और दिन रात ये सब कुछ बोल बोलकर आपके दिमाग में यही सब भर दिया जाए और आपको यकीन दिला दिया जाए कि जो कुछ भी गलत और बुरा हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, तो आखिर एक दिन इंसान टूट ही जाता है जब तक उसे कोई समझाने और सही रास्ता दिखाने वाला ना हो। भवानी काका काफी समय से वहाँ काम करते थे, शायद तब से जब आदित्य के पिता जिंदा थे। आदित्य अपने पिता के साथ यहीं रहता था और उनकी मौत के थोड़े समय बाद तक भी वो यहाँ रहा था। शायद तभी भवानी काका को ये सारी बातें पता थीं। वो सुनैना को ये सब कुछ बताते हैं। सब कुछ सुनकर सारी बातें समझते हुए सुनैना भी वहाँ सोफे पर बैठी हुई आँखें बंद करके एक गहरी सांस भरती है और बोलती है, अच्छा तो अब मुझे समझ आ रहा है क्यों है आदित्य ऐसे और क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं वो सबके साथ, क्यों नहीं आने देते किसी को अपने करीब और मेरे साथ भी। इतना बोलते हुए सुनैना वो सब कुछ याद करने लगती है जो भी आदित्य ने शादी के बाद से लेकर उसके साथ शुरुआत में किया था, और किस तरह वो हमेशा उससे दूर ही भागता रहता था और उसके किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देता था, ना ही उसके साथ रहता था। सुनैना को आदित्य की इन सब हरकतों से बहुत चिढ़ होती थी, साथ ही उसका इतना ज्यादा शराब पीना। लेकिन अब कुछ कुछ सुनैना को उन सब चीजों के पीछे का कारण समझ आ रहा था, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ बातें तो साफ हो चुकी थीं। ब्रैकेट अक्षत का बंगला। नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं आ सकता। अगर मेरे अकेले आने की बात होती तो मैं एक बार कुछ देर के लिए आ भी सकता था, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि एक कपल पार्टी है और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आना होगा, तो सॉरी, वो अभी पॉसिबल नहीं है। अक्षत अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करता हुआ ये सब कुछ बोल रहा था। तभी नैना, जो अब पहले से काफी बेहतर फील कर रही थी और उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी, फीवर भी कम हो चुका था, लेकिन वो कमरे में रहकर काफी ज्यादा बोर हो गई थी, तो बाहर आती है और अक्षत को फोन पर ये सारी बातें करते हुए सुन लेती है। बट सर, जो न्यूज हमने मीडिया वालों को बताई थी उस हिसाब से आपका इस पार्टी में जाना जरूरी है, आप प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए, नैना मैम की तबीयत अब बेहतर होगी। अजय की फोन पर कॉन्वर्सेशन सुनकर अजय भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहता है। नहीं अजय, तुम समझ नहीं रहे हो। नैना को कल काफी ज्यादा बुखार हुआ था और अगर अभी उसका फीवर कम भी हो तो भी वीकनेस तो होगी ही ना। ऐसे में कैसे मैं उसे अपने साथ चलने के लिए बोल सकता हूँ? मैं इतनो भी सेल्फिश नहीं हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन अजय को पकड़ते हुए उससे ये सब कुछ कहता है। उसकी बातों में नैना के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। नैना भी वहाँ आते हुए ये सारी बातें सुन लेती है और अक्षत अजय के बीच में आकर खड़ी होकर बोलती है, सॉरी गाइज, मुझे तुम्हारी बातें सुननी तो नहीं चाहिए थी लेकिन मैंने एक्सीडेंटली सुन ली। तो अक्षत, आई एम फाइन नाउ, कहाँ जाना है और तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो हम चल सकते हैं ना? नैना की बात सुनकर अक्षत और अजय दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि नैना यहाँ पर है। अक्षत उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, नैना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तुम रेस्ट करो चुपचाप, और इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं भी जाना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब डोंट वरी, मुझे अब रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो बोर हो गई हूँ उसी रूम में रहकर दो दिन से, और ज़्यादा कमरे में बंद रहूँगी तो ज़रूर मैं फिर से बीमार हो जाऊँगी। बताओ ना कहाँ चलना है? नैना अक्षत का हाथ पकड़कर उसकी आँखों में देखते हुए थोड़ी ज़िद भरे लहजे में बोलती है, सर देखिए, अब तो मैं भी बोल रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। मैं आप दोनों के लिए पार्टी वियर ड्रेस और इनविटेशन का अरेंजमेंट करवाता हूँ और साथ ही आपकी लग्जरी मर्सिडीज़ भी रेडी करवाता हूँ। इतना बोलकर अक्षत और नैना को बात करने के लिए वहाँ पर छोड़कर अजय वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था अब अक्षत नैना के साथ पार्टी में ज़रूर जाएगा, क्योंकि नैना का भी वहाँ जाने का मन है। क्रमशः